शांति। आज आप सबको बाबा के यज्ञ के फाउंडर यज्ञ के पूर्वजों की कहानी सुनाना है। बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा और इस यज्ञ के अंदर विशेष अपनी बहनों को बच्चियों को ही यज्ञ को संभालने की जवाबदारी दी। बाबा के होते साकार में जब तक बाबा रहे बहुत प्यार से बच्चों की पालना की, बेगरी पार्ट की कई बातें आप सबने सुनी होंगी पढ़ी होंगी। वो पेपर बहुत बड़ा पेपर था जो हमारी दादियों ने बहुत सहज रीति से पार किया। बाबा ने वो जो पेपर लिया उससे सेवाओं का प्रारंभ हुआ। शायद वो पेपर अगर बाबा नहीं लेते तो सेवाएं भारत के अंदर शुरू नहीं होती। वो बहुत बड़ा पेपर था, बिल्कुल बेगरी पार्ट। यज्ञ के अंदर 350 भाई बहने और खाने के लिए भी कुछ नहीं। तो वो जो परीक्षा थी आप सबने सुना होगा। बाबा ने 14 साल तो कराची में हैदराबाद में बच्चों को इतना प्यार से रखा, जो कहते थे वो मंडली में पिस्ता बादाम खाते हैं, सब प्रकार से संपन्न था। क्योंकि बाबा के साथ साथ और 2-3 ऐसे भाई समर्पित हुए थे जो बहुत बड़े जवाहरात के बिजनेसमैन थे। एक तो थे शांतामय दादी के लौकिक पिताजी और दूसरे चंद्रमय दादी के लौकिक पिताजी, ये सब हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे और निश्चय बुद्धि होते ही फुल प्रॉपर्टी सहित सब समर्पित हो गए। तो 3-4 की प्रॉपर्टी थी, बाबा का भी अपना पूरा ही जो था यज्ञ में समर्पित किया और 14 साल तक किसी भी प्रकार की बाहर की कोई भी सेवाएं नहीं और कुछ भी बाहर से कनेक्शन नहीं, सब बाबा के से जो ज्ञान के राज खुले, जो इतना सुंदर आज हम सब बहुत गहराई से सब बातों को समझते हैं। उस समय शुरुआत में संदेशियों के द्वारा बाबा ने ज्ञान को स्पष्ट किया, 3 लोकों का ज्ञान क्या है, साकार आकार और निराकार वतन क्या है, कैसे आत्माएं परमधाम घर से सृष्टि मंच पर आती हैं, पाठ बजाती हैं, पुनर्जन्म लेती हैं, ये सारा ज्ञान बाबा ने संदेशियों के द्वारा उस समय स्पष्ट किया और तपस्या कराई एकांत की सागर के किनारे पर ले जाकर के बच्चों को बहुत अच्छी तरह से कैसे योग करो। तो फाउंडेशन तो पक्का था लेकिन इतना बड़ा पेपर आएगा ये कोई को पता नहीं था। जब यहां भारत में आए और ये अपने आबू में एक कोठी है, भरतपुर राजा की कोठी थी जिसको नाम ब्रज कोठी दिया बाद में, 1-1.5 साल में ही वहां पर बहुत परीक्षाएं आई, एक तो बरसातों के दिन थे, बीमार पड़ गए सब, दवाई नहीं, और दूसरा जो लाए थे वो खा के, क्योंकि खर्चा बहुत हो गया, स्टीमर पूरा भर के आया था, स्टीमर का खर्चा हुआ, फिर पूरी ट्रेन किया था उसमें खर्चा हुआ, जो चल संपत्ति अचल संपत्ति सब खत्म हो गई। और जिन्होंने निमंत्रण दिया था, कहा था बाबा यहाँ आ जाओ हम मदद करेंगे, उन्होंने सब ने सोचा कि अभी अगर इनको मदद न मिले तो ये संस्था टूट जाएगी, परीक्षा लो इनकी। लेकिन वो बाबा के कुछ गहरे राज थे तो उन्होंने मदद नहीं की, और इधर सब कुछ जो कुछ था सब खा पी के पूरा कर दिया। तो बाबा बड़े नशे में बेगमपुर के वासा थे, कहते थे बच्चों का कनेक्शन तो शिव बाबा से है, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा इनकी पालना अपने आप करेंगे। और नशे से कहते थे बच्चे अखबारों में लिखो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड ब्रह्मा कुमारीज, एक तरफ खाने के लिए नहीं और दूसरी तरफ, इतना निश्चय था, इतना नशा था। क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे ये जो धन है अविनाशी ज्ञान धन, वो किसी के पास दुनिया में नहीं है, आप बच्चों को बाबा के तरफ से ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, चरित्र का धन कितना प्राप्त है, अब इस धन को अगर बांटोगे तो वो धन अपने आप आ जाएगा। तो ये एक इशारा मिला और बहनों ने बड़ी हिम्मत से बिना कोई निमंत्रण बिना कोई पहचान के चित्र लिए और सेवा पर निकली। तो सेवाओं का प्रारंभ बहुत बेगरी पार्ट से हुआ, सागर के नदी के किनारे पर, गंगा के किनारे पर बैठ के चित्र लेके जब देते थे ज्ञान बहने बाहर वालों को, तो उनको दादियों के जो पवित्रता के वाइब्रेशन थे, इनोसेंट चेहरा था, एकदम इतने समय की योग की तपस्या थी, तो ज्ञान नहीं सुनते थे वो, दादियों के द्वारा उनको अच्छे अच्छे अनुभव होते थे, और अनुभव होते वो कहते थे दीदी दादी आप यहाँ क्यों बैठी हैं पानी के किनारे, चलो आपको अपना भवन देते हैं वहां ही ज्ञान दो, यहाँ नहीं आप बैठो। तो इलाहाबाद कुंभ मेले से ही सेवाओं का प्रारंभ हुआ, सेंटर्स खुले, और दादियों ने जो त्याग वृत्ति से स्थापना में अपना योगदान दिया वो बहुत वंडरफुल कहानियां हैं। खुद खाती थी क्या, एक बार कहते एक माताएं ज्ञान में आई कुछ निकली, तो एक दिन सोचने लगी दादियां भोजन कब बनाती हैं, सारा टाइम ज्ञान सुनाती रहती हैं और कब खाती हैं कब बनाती हैं, इनको एक बार चेक करें। तो कुछ माताओं ने कहा दादी आज हम आपका भंडारा देखना चाहते हैं। तो उनको शर्म आए भंडारा इनको क्या दिखाऊं, भंडारा तो है ही नहीं, सिर्फ एक नमक की शीशी है, आटा है, और बाजार से वो छोटी छोटी आलू लेके आते थे, दो टुकड़ा किया और उसका रसा बना दिया, आ नमक डाल करके और रोटी और आलू तीनों टाइम खा लिया। तो भंडारे के अंदर कुछ भी नहीं, तो उनको देख के बड़ा ख्याल चलता था कि ऐसे कैसे दादियां आप कैसे ऐसे रहती हो, हम ये देंगे ये देंगे। तो जब वो देती थी तो वो अपने लिए नहीं रखती थी, कहते एक बार कुछ डिब्बे तेल के किसी ने घी के तेल के भेज दिए, वो दादियों ने चुपचाप उठाया मधुबन भेज दिया, दूसरे दिन कुछ नहीं। माना मधुबन से दादियों का इतना प्यार था कि बाबा के पास पहले जाना चाहिए, हम जैसे रहेंगे वैसे ठीक है। तो बहुत त्याग वृत्ति से यज्ञ की स्थापना हुई। जानकी दादी जी के अनुभव सुनो, 25 पैसा लेकर के यहां से चली जाती थी, स्टेशन मास्टर की सेवा करती थी, उससे टिकट निकलवाती थी, सेवा करके उससे कहती थी यहां से यहां तक मुझे जाना है आप टिकट बना के दे दो, बिना टिकट नहीं जाऊंगी। ज्ञान सुना करके सेवा करके टिकट बनवा लेती थी और चले जाते थे, और फिर शहरों में पैदल चल चल करके 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर इधर से उधर जा करके और ज्ञान सुनाना और सेंटर्स की स्थापना करना। तो इन दादियों ने उस समय जो त्याग के आधार से, तपस्या के आधार से सेवाएं की हैं, आज हम सभी उसका फल खा रहे हैं। अब जब मेरा आना हुआ मधुबन के अंदर, बाबा अव्यक्त हो गए थे, 71 में मैं आया, उम्र छोटी थी, 15 साल का मैं था। मैं तो ऐसे घूमने देखने आया था, लेकिन एक मास यहां मैं रहा। जून महीने की छुट्टियां थी स्कूल की, तो एक महीने में इतना प्यार, इतना एक दूसरे से स्नेह हो गया, दादियों की इतनी अच्छी पालना मिली। आज मैं आपको ऐसी दादियों के नाम सुनाऊंगा जो शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि कई दादियां तो प्रसिद्ध हैं, बहुत सेवाएं की हैं, उनको हम सब जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन ऐसी दादियां जो यज्ञ के अंदर ही रही, बाहर इतनी सेवा पर नहीं निकली। और जब मैं आया हूं तो उन दादियों की, उन माताओं की, मूल तो माताएं थी यहां जो रहती थी, एक थी हमारी दीदी की लौकिक माँ क्वीन मदर, नाम ही था क्वीन, और दीदी कभी उनको मदर नहीं कहते, कोई कह भी नहीं सकता था ये दीदी की माँ है। दीदी मनमोहिनी संस्था की हेड बनी, मम्मा के अव्यक्त होने के बाद बाबा ने उनको 65 में दिल्ली से बुला के अपने साथ रखा था। और क्वीन मदर कभी बॉम्बे में रहती थी, कभी यहाँ रहते थे। बॉम्बे में उनकी दूसरी बेटी थी मनमोहनी दीदी की छोटी बहन सील दादी, उनको हम कहते थे ये बॉम्बे की गवर्नर है। बहुत पावरफुल और बहुत अच्छी संदेशी थी। तो ये दो बहनें और माँ, ये तीन समर्पित थे। तो दीदी को बाबा ने सेवा पर भेजा और सील दादी को लौकिक सेवा के लिए। लौकिक संबंधी इनके बहुत अच्छे धनाढ्य लोग थे, परिवार बहुत समर्थ शक्तिशाली था। उन्हीं का भाई का हॉस्पिटल जस्ट लोक हॉस्पिटल है बॉम्बे में। तो सील दादी को क्वीन मदर के साथ बॉम्बे में बाबा ने मकान अलग से दिलवाया था उनके भाई बहनों ने, तो वहीं पर अधिकतर रहती थी, आती जाती थी मधुबन में। तो जब बाबा व्यक्त हो गए तो क्वीन मदर यहाँ थी। जब मैं आया हूँ बचपन में तो क्वीन मदर मदर ही थी पूरी, बहुत प्यार की पालना देना आता था। और हम सब भाई छोटे छोटे आए थे मधुबन में, तो दीदी कहती थी क्वीन इन सबके कमरों में जाया करो, इन सबको कपड़े कैसे सेट करके रखना होता है, क्योंकि उस समय प्रेस नहीं होती थी, बिगड़ी पार्ट था ही, कोई भी प्रेस नहीं कर सकता था और प्रेस होती ही नहीं थी। ये सिखाती थी, धोबी घाट से कपड़े मिल जाते थे तो उसमें पानी लगा करके, तह लगा करके तकिया के नीचे बिछा लो, और तकिया के नीचे बिछाएंगे तो रात भर में प्रेस हो जाएगी, सवेरे वो पहना। तो हम लोग अपने बिस्तर के नीचे तह करके लगाते, लेकिन तह करना विद्वाना चाहिए ना, तो क्वीन मदर आकर के कपड़े तय करके हमको बताती थी ऐसे तय करके लगा लो। और फिर कहती थी इनकी अलमारी कैसे रहती, इनकी सेट करके आना, क्योंकि अलमारी में कपड़े हम लोगों को एक एक दो दो खाने मिलते थे, क्योंकि एक कमरे में अगर 5-6 हम रहेंगे तो 5-6 भाइयों को कितना जगह मिलेगी, अलमारियां दो तो एक खाना या दो खाना अलमारी के अंदर मिलता था, तो जो आया कपड़ा उसके अंदर भर दिया। तो दीदी कहती थी इन गोपों को रहना नहीं आता है, भाइयों को गोप कहते हैं ना, तुम जाया करो क्वीन, इनके कपड़े सेट करके इनको अलमारी सजाना सिखा के आया करो, क्योंकि और तो सेवाएं इतनी नहीं थी यज्ञ के अंदर। हम ही सब थे, खाना पीना पिकनिक करना, और जो आ गए 150 लोग उनको प्रबंध देना सब प्रकार का, और साइंस के कोई साधन नहीं हमारे पास। धोबी घाट भी ऐसे करते थे, पाटे पर, रोटियां चूल्हे पर, और पानी एक जगह गर्म करते थे। सुबह सुबह 4 बजे सबके कमरों में बाल्टियां पहुंचाते थे, हम भाइयों की ही सेवा थी। और दादियां भंडारे में अधिकतर सब सेवा देती थी। फिर मुरली लिखने की सेवा शुरू हुई, तो मुरली लिथो होती थी साइक्लो स्टाइल, और उसमें सिंधी हिंदी बाद में इंग्लिश शुरू हुई, लेकिन सिंधी हिंदी दो ही भाषाएं थी। तो सिंधी के कारण मेरे साथ दादियों का बड़ा अच्छा संबंध हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ आते ही सिंधी भाषा पढ़ना लिखना सीखा, टाइप सीखी। तो जब सिंधी सीख गया तो दादी का यही रहता था कि तुम ही इनसे दादियों से टाइप लिखवाओ, वहां से सिंधी में साइक्लो स्टाइल के लिए स्टेंसिल काटते थे, स्टेंसिल हाथ से लिखते थे। तो हाथ से लिखने के लिए फिर दादियों को मुझे पकड़ना पड़ता था, दादी आज आप मोलिट लिख दो, आज एक आप लिख दो। तो जो दादी हमको मिलती थी और जिसकी राइटिंग अच्छी होती थी, दादी कहती थी इसके पास जाओ, उसकी राइटिंग अच्छी है, ये लिखेगी, ऐसे मुझे भेज देती थी। तो मैं उनसे स्टेंसिल पर मुरली लिखवाता था सिंधी में, और उस समय 200-400 जो भी सिंधी निकलते, अभी तो बहुत कम हो गई, दादियां चली गई सब। तो स्टेंसिल लिखवाते थे उनसे, तो तीन दादियां मेरे कनेक्शन में आई सिंधी लिखने में। एक दादी थी जिसका नाम था सुंदरी, और उनको दादी कहती थी सुंदर बेटा, और हम लोग ऐसे में कहते थे डम डम। बहुत हंसती थी और बार बार कहती थी डम डम, पेट भरा हुआ है डम डम। वो दादी बड़ी रमणीक थी, और सुंदर बेटा दादी इसलिए कहती थी क्योंकि उनकी माँ उनके साथ थी, और माँ सदा बीमार थी, बहुत बीमार रहती थी। और मधुबन में सीवरेज वाली गटर लाइन वगैरह की लेटरिन बाथरूम नहीं थी, कम्बोर्ड होते थे अपने अपने और जमादार आके सफाई करते थे। तो ये माता, ये बहन हमारी सुंदरी बहन कुमारी थी, और उसकी माँ साथ में थी। तो मधुबन में जो भी टोली डिपार्टमेंट है जहाँ स्टोर करते हैं टोली का, ये उनका कमरा था, यही उनको एक बाथरूम छोटा सा बना के दिया था ऐसे ही, और माँ बेटी साथ रहते थे। तो सारा दिन माँ की सेवा करते थे, सब प्रकार की सेवा, खाना बना के देना, उनकी सफाई करना, उनकी लेटरिन वगैरह सब वही करते थे। तो दादी कहती थी सारा दिन लौकिक में लगी रहती है, आप इसको अपने साथ मुरली लिखने में लगाओ, बहुत अच्छी राइटिंग है। तो मैं जाता था, कहता था दादी आज मेरे साथ मुरली लिखो। ये मुरली तीन पेज ही है, चार पेज, तीन पेज होती थी, लंबे पेज होते। तो मैं उसे सुंदरी दादी से मुरली लिखाता था, और उसके अंदर भोजन बनाने की बड़ी अच्छी कला थी, बहुत अच्छा भोजन बनाती थी, और विशेष करके सिंधी में सेल मानी बहुत अच्छी बनाते थे। तो हम लोगों को बार-बार बीच बीच में सेल मानी खिलाती थी बना करके, और मुरली हमारे साथ लिखती थी। जब उसकी माँ ने शरीर छोड़ा तो इन दादियों की जो यूनिटी थी बहुत जबरदस्त यूनिटी थी। बाबा के बाद प्रकाशमणि दादी का कहना सब दादियां माने बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दादी कभी मधुबन में साथ नहीं रही थी बाबा के, वो तो बॉम्बे में गाम देवी सेंटर में थी, उसके पहले पटना में सेवाएं की थी, और बाबा ने अचानक उनको निमित्त बना दिया साकार से। अब जब अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाशमणि को हेड बना दिया गया। तो जब बाबा ने उनको कलश दिया और दादी और दीदी की जोड़ी बनाई, तो जो दीदी दादी कहें, जैसे बाबा के सामने सब आज्ञाकारी थे, सपूत थे, बाबा को कोई ना नहीं करते थे, ऐसे ही दादियों ने कभी दादी जी को ना नहीं किया। जो दादी कहे, जैसे कहे, यहाँ जाना है, यहाँ बैठना है, यहाँ रहना है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तब इतना संगठन मजबूत रहा है। क्योंकि अगर एक भी थोड़े टेढ़े निकल जाए तो बड़ा विघ्न पड़ सकता था। तो सब दादियों को हमारी दादी जी बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत प्यार से, उनको सम्मान देते हुए उनसे सेवा भी लेना, क्योंकि बाबा ने सिखाया था कोई को भी सोने नहीं देना, बीमार हो जाता तो भी कहो जाओ रोटी में घी तो लगाओ, गोला गोला पेड़ा बनाओ जा करके, किसी को सोने नहीं देना। तो दादी बहुत एक्टिव थी, कोई भी कार्य के लिए खुद आगे आ जाते थे, और खुद करती थी इसलिए सबको करना ही पड़ता था। दादी ने क्या क्या काम किए होंगे इस स्थूल में, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे साथ भी जो किए, मधुबन में उस समय हमारे पास चारपाइयां जो थी निवाड़ की थी, सुना होगा निवाड़, अभी तो ये नायलॉन वाली निवाड़ आ गई, लेकिन उसमें सूती थी, सूती निवाड़ सफेद आती थी। और सूती निवाड़ की जो चारपाइयां होती थी, हमारी माउंट आबू में बरसात और फाग बहुत होती, तो बरसात और फाग में उसमें खटमल बहुत पड़ जाते थे। उसके बाद बरसात के बाद कोई उस पर सो जाएगा तो सोने नहीं देंगे, बहुत खटमल हो जाते थे। तो दादी क्या करती, जब बरसात पूरी होती थी हर साल सब चारपाइयां खोलो और जितनी निवाड़ है उस सब को तैयार करके पहले धोबी घाट में ले जाओ, गरम गरम पानी और सोडा में डालो, रात भर उसको पकाओ और फिर सवेरे उसको झटके लगाओ, साफ करो। और साफ करने के बाद फिर सुखा करके उसके गोले बनाओ और गोले बना करके फिर चारपाई बुनो। तो दादी हमेशा इस बात में भी आगे रहती थी, गोले बनाने में भी आओ हमारे साथ बैठो। फिर जब चारपाई खींचते थे तो मुझे याद है चारपाइयां टाइट होनी चाहिए, ढीली नहीं रह जानी चाहिए, तो एक तरफ दादी और एक तरफ हम खींचते थे, अरे और जोर लगा ना, और जोर लगा, अभी तुम जवान है और लगाओ जोर। तो ऐसे हमारी दादी साथ में रह करके खेल खेल में, हंसी हंसी में, ऐसे खेलते खेलते, क्योंकि और कोई सेवाएं नहीं थी बाहर की, सेंटर्स बहुत कम थे, कभी कभी जाती थी। 71-72 की बात मैं आपको सुना रहा हूं। तो उस समय हमारे मधुबन के अंदर अगर कोई अनाज आता था तो उसकी भी बड़ी अच्छी रखवाली होती है, क्योंकि मजदूर नहीं थे, मजदूरों से नहीं उठाना अंदर, हाँ उनका हाथ नहीं लगना चाहिए, उनको नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो जितनी बोरियां आई, कारण तो बेगरी पार्ट था, पैसा तो था ही नहीं जो मजदूरों को रखा जाए, लेकिन बहुत युक्ति से हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती थी बोरियां कैसे सेट करनी है। और जितना गेहूं और चावल आता था, दादियों के अंदर बहुत यज्ञ के प्रति वफादारी भी थी और स्वच्छता का बहुत ध्यान था, तो जितना गेहूं आता था उसको सबको धुलाती थी, पानी में डलवाती थी, सब धो पानी में डालो और निकाल करके शांति स्तंभ पर सुखाते थे गेहूं को। और दादी का अटेंशन बहुत रहता था, ऐसा नहीं है रात को कहीं बादल आ जाए, बरसात आ जाए और गेहूं बह जाए सारा, और अगर जरा भी कोई ऐसा माहौल दिखाई देता था तो रात को ही 12-1 बजता था, देखती थी बादल आए हैं और गेहूं बाहर पड़ा सूख डाला हुआ है, तो बाहर आ जाती थी और घंटी बजवा देती थी, अभी सब भाइयों को बुला लो, रात को ही 12-1 बजे घंटी बजी, क्यों बजी है अचानक, पहरे वाले कहते कोई भी सोने नहीं देना, सब उठा लाओ। तो हम सब भागते थे, घंटी बज गई माना भागना है रात को भी, फिर सब गेहूं उठा रहे हैं, दादी भी लगी हुई साथ में, बोरियां भर रहे हैं, उठा रहे हैं फटाफट, कहीं बरसात न पड़ जाए। तो हर एक चीज सफाई के लिए, चावल आते थे तो कहती थी चांदनी रात में इसको शांति स्तंभ पर फिर फैला दो, इसमें जो कीड़े छोटे मोटे हैं सब निकल जाएंगे, चावल शीतल हो जाएगा, फिर इसको रख दो भर करके। ये बहुत सेवाएं थी, बहुत अच्छी तरह से हम लोग सब मिलके करते थे और सब स्थूल सेवाएं। दादी जी एक्टिव के साथ साथ सबको लगाती थी, ऐसे नहीं कि एक दो छूट जाएं, सबको कहती थी सब अपनी अपनी अंगुली लगाओ, सबका सहयोग लगेगा तो योग आपका सहज लग जाएगा। तो इसलिए दादियों को, सुंदरी दादी को, जो सुंदरी की बात मैं सुना रहा हूं, मेरे को कहती थी इससे जरूर मुरली लिखाओ, इसको बिजी करो अपने पास। तो मैं बहुत प्यार से उससे मुरली लिखाता था, फिर कभी कभी कहता दादी आज खाना बना दो ना, सेलमानी बना दो, तो सेलमानी बना के ले आती थी। ऐसे ही दूसरी दादी थी जो अभी छोटे थोड़े दिन पहले शरीर छोड़ा, लेकिन उनका नाम था लीला चटनी, लीला चटनी हम कहते थे, शायद चटनी उनका सरनेम था या चटनी खाने का इंटरेस्ट होगा मुझे मालूम नहीं है। और वो लीला चटनी जो थी मधुबन में ही थी और वो भी मुरली की बहुत अच्छी राइटिंग लिखती थी, बहुत अच्छी राइटिंग थी। तो लीला चटनी के साथ बैठ करके मैं मुरली लिखता था। उनकी भी एक माँ और एक बहन थी, ये तीन तीन लगभग सभी बहनें ऐसे ही आई मधुबन में, एक बहन एक माँ। तो लीला चटनी को दादी ने एक बार कहा कि हैदराबाद में, सिकंदराबाद में बहुत अच्छी सेवाएं शुरू हुई हैं, तुम सेवा में जाओ। और उनका कोई संबंध भी था लौकिक का भी वहां। तो दादी ने लीला चटनी को मुरली छुड़ाई, मेरे से कहा इसको छुट्टी कर दो, दूसरी दादी को कोई ले लेना। तो उनको फिर हैदराबाद सिकंदराबाद में भेज दिया। और सिकंदराबाद में उसने जाके जो पालना की है, आज वहां पिल्लर्स के रूप में भाई निकले बहुत अच्छे, जो आज पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद की सेवाओं में महारथी हैं। दादी ने बहुत अच्छे, आज तक याद करते हैं उसको। लास्ट में चन्ना रेड्डी उनके सेंटर का ही उद्घाटन करके उसके बाद गया, जिसने हमारे ज्ञान सरोवर बनवाने में बहुत मदद किया। इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है ज्ञान सरोवर की। तो लीला चटनी हमारे साथ काफी समय मुरली लिखी। फिर दादी ने कहा अच्छा इसको हमने हैदराबाद भेज दिया, सिकंदराबाद में गई, अभी दूसरी दादी को पकड़ो। फिर दूसरी दादी मिली हमको संदेशी दादी। संदेशी दादी का नाम तो सुना होगा, शांतामणि दादी की लौकिक बहन। वो भुवनेश्वर में थी, अभी भुवनेश्वर में श्री छोड़ा। पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर में बहुत सेवाएं की, मारवाड़ी माताएं बहुत निकाली उन्होंने। तो कुछ समय दादी को यहां पर बाबा ने, बाबा के साथ तो बहुत रमणीक थी, खेल पाल करती थी, संदेशी थी, नाम ही उसका संदेशी था। और बाबा के साथ चौपड़ खेलने में उसका नंबर वन स्थान था, बाबा को हराती थी वो हमेशा। तो दादी ने कहा संदेशी की राइटिंग में बहुत अच्छी, शांतामणि दादी की राइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन शांतामणि दादी को सेवाधारियों का इंचार्ज बनाया था। जो भी सेवाधारी मधुबन में आते थे, दादी हमेशा उन पर ध्यान देती थी, उनसे मिलती थी। और पूरे डिपार्टमेंट में कहां किस सेवा की, सेवाधारी की जरूरत है, वो दादी ही सब हैंडल करती थी। तो संदेशी दादी ने कुछ समय मुरली लिखी। और ये दादियां बड़ी रमणीक थी और बहुत मिलनसार थी। कभी भी इनको कभी गुस्सा करते, जोर से बोलते, टेंशन में नहीं देखा, सदा मुस्कुराते, हंसते और बहुत ध्यान रखती थी। इतना ध्यान रखती थी, हमारी एक भूरी दादी थी, सुना है भूरी दादी का नाम? भूरी दादी का तो सुना होगा, देखा भी होगा, अभी थोड़े दिन पहले से छोड़ा। भूरी दादी सबको रिसीव करते थे, जो भी ग्रुप आते थे पहले उनकी ही सेवा थी। हाबू रोड में मकान नहीं था अपना, संगम भवन बाद में लिया। वो सिंधी भाई बहनों का बहुत उनसे प्यार था, आबू में जो सिंधी कॉलोनी है उनके घर में ही जाकर के कमरा लेके रहते थे। और जितनी ट्रेन आती थी, सब ट्रेन में जो आते थे उनको रिसीव करना, उनको गाड़ी करके ऊपर भेजना, और यहां से जो जाते थे उनको बिठाना। ये भूरी दादी की बहुत अच्छी सेवा थी और बहुत टिप टाप रहती थी, बहुत टिप टाप चलती थी, ठक ठक ठक, और बहुत एक्टिव थी। तो सारे सिंधी लोग बड़े खुश थे वहां आबू रोड के, कि आपके पास इतनी एक्टिव दादी है, इतनी मेहनत करती है। रात को ट्रेन आती है तो रात को चली जाती रिसीव करने, किसी को बिठाने। और टीटी लोगों की बहुत अच्छी सेवा की थी, बहुत अच्छी तरह संभालती थी। फिर उसके बाद उनको एक भाई मिले ओम प्रकाश भाई, वो फिर सेवा में लगे साथ में। और दादी धीरे धीरे उस सेवा से छुटकारा पाया। लेकिन फिर दादी एक मिनट भी फ्री नहीं बैठ सकती थी, वैसी दादी थी, माँ थी वो, मदर थी। उसकी एक बेटी अभी भी पाकिस्तान में है। लेकिन वो दादी जब वहां से छुट्टी पाई ट्रांसपोर्ट की सेवा से, भोजन खिलाने की सेवा लिया मधुबन में। और भोजन खिलाने पर इतनी एक्टिव थी, इतना सबका ध्यान रखती थी, कोई भाई किस दिन खाने पर नहीं आया है उसका ध्यान रहता था। और हम लोगों का विशेष अगर नहीं आया या लेट हो गया तो छिपा करके पहले रख लेगी अलग से, कि वो अभी तक नहीं आया है उसके लिए रखा है, ऐसे नहीं खत्म हो गया है हम लेट जा रहे हैं। और अगर मान लो मैं नहीं गया किसी कारण से, तो शाम को कमरे में आ जाएगी, आज तुम कहां थे, क्यों नहीं खाना खाने आए, तुम्हारा खाना रखा है अभी तक। मतलब ये थी पालना। एक एक से, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा। लास्ट दिनों में कहती थी, देखो मेरे को फल ला करके दो। हम लोग जाते थे नीचे ऊपर, तो उनके लिए केला ले आना, फल ले आना, बहुत सेवा, क्योंकि बहुत सेवा की थी भूरी दादी ने। एक भूरी दादी, एक भोली दादी और एक जमुना दादी। जमुना दादी को तो सुना होगा ना, जमुना दादी हमारी थी मम्मा की ब्राह्मणी, मम्मा के साथ बहुत सेवा किया। जहां जहां मम्मा गई, बॉम्बे गई, बेंगलोर गई, उत्तर प्रदेश कानपुर में गई, हमारी जमुना दादी सदा मम्मा की सहयोगी साथी थी, ब्राह्मणी के रूप में सेवा देती थी। जब मम्मा व्यक्त हो गई तो फिर क्या करेगी, तो जमुना दादी भी भोजन खिलाती थी भंडारे में, क्योंकि दादियां अपने को फ्री नहीं रख सकी, फुल बिजी रखना है। कभी भी उनको फ्री देखोगे नहीं, चाहे वो स्वेटर बना रही हूं, चाहे वो भोजन खिला रही हूं, कुछ न कुछ काम जरूर करेंगी, बिजी रहेंगी। तो जमुना दादी भी हम लोगों का भोजन पर बहुत ध्यान रखती थी। और भोली दादी की एक छोटी बहन का नाम था सती दादी। सती दादी का भोजन जो बनाती थी ना, भोली दादी तो भंडारे की इंचार्ज थी, और भोली दादी की सेवा कराने का तरीका बड़ा जबरदस्त था। अगर हम लोग कभी भी दो चार दिन दादी के सामने न जाएं और अचानक कहीं मिल जाएं, तो बस पकड़ के हाथ अपने बाजू में बिठा के एक एक चीज पूछना, तबीयत ठीक रहती है, कुछ चाहिए तुमको, क्यों नहीं दिखाई दिए, दादी से रूठ गए हो क्या, क्यों नहीं मिलते हो। एक दिन भी उस दादी को, तीन चार दिन अगर हमने मिस कर दिया, नहीं मिले, तो जरूर बुला करके बोलेगी, पूछेगी, और हमेशा कहेगी देखो तुम्हारे लिए देसी घी छिपा के रखा है, ये ले जाओ खाना, कभी कभी तुमको मक्खन चाहिए ना तो दादी से ले जाया करो, कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं, ले जाया करो, मांग लिया करो, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी ना, इतना प्यार। लेकिन सेवा लेने का तरीका, जब भी जाओ तो उनके शब्द सिंधी भाषा में कहती थी, आज तुम तवे पर खड़े हो जाओ, तवे पर खड़े हो जाओ। हम डर जाते थे, तवे पर खड़े हो जाओ क्या होता है, या कहेगी सिगरी पर बैठ जाओ, सिंधी भाषा में सिगरी पर बैठ जाओ। तो हमने कहा ये दादी, ये सिगरी पर बैठ जाओ, तवे पर खड़े हो जाओ, ये कौन सी भाषा है, कैसे खड़े होंगे तवे पर, गरम गरम तवा होता है, अरे उस पर थोड़ी खड़ा होना है, रोटी पकाने पर, रोटी पकाने पर खड़े हो जाओ। तो कहती है तवे पर खड़े हो जाओ, सिगरी पर बैठ जाओ। अब सिगरी पर कोई बैठेगा क्या, लेकिन उनकी रमणीक भाषा थी। अगर सफाई करनी हो आज लाल झाड़ू लगा, झाड़ू पहन दो, झाड़ू पहन लो आज, अब झाड़ू पहन लो एक भाषा है, झाड़ू पहन लो। तो बड़ी रमणीकता से हंसते थे हम लोग, दादी आज झाड़ू पहनना है मेरे को, पहनना, लगाने को कहती थी पहनना। तो ये दादियां थी, बड़ी रमणीक थी, अब लोग खूब हंसते थे दादियों से। तो ये परिवार था, छोटा सा परिवार, सुखी परिवार कहते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो पांडव भवन के परिवार में एक ध्यानी दादी की पालना ली, ध्यानी दादी ने मम्मा को अडॉप्ट किया था। मम्मा की जो तीन बहनें थी उसमें एक ध्यानी दादी थी। तो ध्यानी दादी अम्बाला में वैसे रहती थी, लेकिन लास्ट समय में मधुबन आ गई थी, कुछ समय यहीं रह करके यहीं शरीर छोड़ा। उन्होंने ही सब दादियों को ज्ञान दिया, कोर्स कराया बाबा के सामने कराची में। मम्मा को भी कोर्स कराने वाली दादी की बहन थी, संध्यानी दादी की, उनका ध्यान का पार्ट था, और बहुत सरल स्वभाव की, बहुत अच्छी नेचर, बाबा बाबा एकदम बाबा उनके दिल में बसता था। ये पिलर्स थे यज्ञ के, जो पूर्वज कहते हैं ना, पूर्वज, हम आजकल की दादियों को इनको ही समझते, यही सब पूर्वज हैं। लेकिन एक व्रत्ता किसको कहा जाता है, पिता व्रत्ता किसको कहा जाता है, पढ़ाई किसको कहा जाता है, योग क्या है, इन दादियों के रग रग में भरा हुआ था। एक को भी आप कहीं भी बुद्धि का भटकना, कोई साधनों के पीछे भागना, किसी के प्रति कोई आकर्षित होना, एकदम एक वृत्ता, एक बाबा दूसरा न कोई, कोई भी चीज उनको कोई अगर दे जाए तो कोई ने अपने पास नहीं रखी, बाबा के यज्ञ में दे दिया, समर्पित कर दिया। इतनी समर्पित भाव से दादियों ने इस यज्ञ को चलाया। तो ये पुरानी दादियां जो हमारी पिल्लर्स रही हैं, एक एक नंबर वन, और इनका शरीर भी बहुत प्यार से, बहुत इजी दफ्ते से छूटा है। क्वीन मदर कहती थी, मेरे सामने मरने के समय, शरीर छोड़ने के समय लौकिक कोई नहीं होना चाहिए। लौकिक यहां पर दीदी थी उनकी, और सील दादी कभी कभी आती थी। सील दादी की एक लवनिक बात सुनाता हूँ। वो अपने लौकिक में जब वहां जाती थी, हांगकांग उनका उस साइड में बिजनेस भाइयों का था, तो वहां से कोई ना कोई चीजें ले आती थी मधुबन वालों को देने के लिए। तो एक बार मेरे को बुलाया कमरे में, कहती है तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूँ हांगकांग से। क्या लाई दादी? घड़ी लाई हूँ तुम्हारे लिए, हाथ गए घड़ी। तो मेरे को घड़ी दी, हमने कहा दादी कोई पहनता नहीं मधुबन वाला, मैं पहनूंगा तो सब क्या कहें। कहती ये कुर्ता जो होता ना, इसके अंदर पहनना, ऐसे दिखाई नहीं देना चाहिए, दिखाई देगा तो तुमसे रोग ईर्ष्या करेंगे, इसको घड़ी क्यों मिली, मेरे क्यों नहीं मिली। लेकिन तुमको मेरी दिल है, घड़ी पहनो, क्योंकि तुम टाइप करता है, टाइम को तुमको कॉन्शियस होना चाहिए, टाइम का पता चलना चाहिए, ये सब घड़ियां तो वहां लगी नहीं रहती घर में। तो इसलिए दादी ने मेरे को छिपा करके घड़ी दिया और पहनने के लिए बोला कुर्ते के नीचे पहनना, दिखाना नहीं किसी को। तो ऐसे हमारी दादियां जिन्होंने यज्ञ के अंदर आज बीज बोया, इतना यज्ञ की पिल्लर बनी, स्थापना करने में बाबा के प्रति समर्पित भाव रखा, और उसके बाद जो संभाला, चलो बाबा थे तो बाबा थे, लेकिन बाबा के बाद बहने एक होकर के रहें, एक दूसरे को इतना रिगार्ड दें, इतना रिस्पेक्ट दें, कोई सेवा कोई छोटी बड़ी कोई भी इनको कह दो, कभी भी ये नहीं कहा ये मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता। बड़ी दादी को कभी भी इन लोगों ने काटा नहीं। जैसे जानकी दादी को जब पहले पहले कहा दादी आपको लंदन जाना है, दादी सोच में पड़ गई मेरे को लंदन जाना है, मैं तो इंग्लिश नहीं जानती हूँ, मैं तो 3 क्लास पढ़ी हूँ, मैं क्या करूंगी। लेकिन दादी का कहना और जानकी दादी ने कहा यस दादी जैसा आप कहोगी, लंदन गई। इतनी सेवाएं देखो कराई दादी ने, कितने साल, 40 साल लंदन में रही। और जाने का कारण ये था, दादी ने उनको इसलिए कहा क्योंकि जो लंदन में माता जयंती बहन के लोग, एक माता रजनी माता थी और मुरली दादा थे उनके मात पिता, वो सब पूना के थे, और वो पूना से ही ज्ञान लेकर के फिर वहां लंदन में शिफ्ट हुए थे। तो जयंती को अगर भेजा जाता था तो जयंती बहन कहती थी मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं तो भारत में सेवा करूंगी, अगर मैं जाऊंगी तो दादी के साथ जाऊंगी। तो जानकी दादी को फिर दादी ने तैयार किया और 74 में जानकी दादी लंदन की सेवा पर गई। फिर वहां कैसे सेवा की, मैं दादी का स्थान देख के आया हूं लंदन में, एक छोटा सा बिल्कुल 2 कमरे का मकान, और उस मकान में रह करके दादी ने जो तपस्या की, योग किया, और बिना कोई साधन के, कहती है जब मैं पैदल एक दिन चक्कर लगा रही थी तो वहां पर कोई सामान अगर फेंकना होता है, निकालना होता है घर से, तो लोग अपने दरवाजे के बाहर रख देते हैं, और फिर वो गाड़ी आती गवर्नमेंट की, म्युनिसिपल की, म्युनिसिपैलिटी वाली, और गाड़ी उठा के ले जाती है, उसको जला के खत्म कर देते। तो जब एक दिन दादी चक्कर लगा रही थी तो किसी ने अपने घर के आगे एक दरवाजा निकाल के रखा था, मकान का टूटा हुआ दरवाजा, थोड़ा अच्छा लगा दादी को कि इतना टूटा हुआ नहीं है। तो दादी ने देखा और आई, कहती अपने भाइयों को वहां जो क्लास में आते थे कि दरवाजा ये निकाल के रखा है, ये उठा के ले जाएंगे, जला देंगे या कुछ करेंगे, ये दरवाजा उठा के ले आओ। तो दरवाजा उठा करके जब घर में लाए तो दादी ने उसके नीचे थोड़ा सामान रख करके उसको संदल बनाया और उसी पर रात को सोना, और सवेरे सारी सफाई करके घर तैयार करके उस पर बैठ करके संदली पर मुरली सुनाना, कोर्स कराना। ये था त्याग। कोई गाड़ी नहीं, कोई साधन नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, उसी घर में रह करके लंदन में सेवाएं की। और आज इतना बड़ा विस्तार है, अगर लंदन कोई देखेगा कितने भवन हैं, कितने सेंटर्स हैं, कितने बड़े बड़े अपने ग्लोबल हाउस है, डायमंड हाउस है, रिट्रीट सेंटर है, वंडरफुल दादी की तपस्या है। उससे स्थापना हुई। जो त्याग वृत्ति थी, जो कभी भी कोई सेल्वेशन लेकर के सेवाएं नहीं की। आजकल कोई सेवा करने जाता है तो पहले क्या सोचता है, साधन हो तब तो जाएंगे, यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, वहां पर एसी नहीं है, कैसे वहां रहेंगे, बहुत सारी बातें सोचते हैं। लेकिन इन दादियों ने कुछ भी नहीं सोचा और बहुत त्याग वृत्ति से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा जैसे कहे, दादी के जैसे कहे मुझे करना है। और दादी का एक पहला से ही लक्ष्य रहा, स्लोगन रहा कि जो कुछ आएगा, मान लो भंडारी के अंदर अगर 80 पाउंड आएंगे तो आधा यज्ञ में जाएगा, हमेशा शुरू से अभी तक भी वो सिस्टम बना हुआ है। कभी भी वहां खर्चा कितना भी हो, लेकिन पहले यज्ञ में जाएगा, फिर जितना होगा उसमें हम सब सेट करके चलाएंगे। तो दादी कहती है कि कुछ भी भंडारे में आया, पहले आधा हिस्सा मधुबन का निकाल दिया। तब आज देखो दादी को बाबा ने यज्ञ में लास्ट दिन में इस समय इतनी उम्र में किस लिए रखा। कई बार जानकी दादी हम लोगों से बैठती है, पूछती है, भाई सबको तो पासपोर्ट मिल गया, मुझे क्यों बाबा नहीं बिठा देता है। तो हम दादी को क्या कहते हैं, दादी आपके बैठने से यज्ञ का भंडारा और भंडारी भरपूर है, आपका बैठना ही भंडारा भरपूर है। तो दादी आज यहाँ बैठी है तो सब देश विदेश वाले आते हैं, अपना सब तन मन सफल करते हैं, धन सफल करते हैं। और इतना बड़ा यज्ञ जो चल रहा है, बहुत दादी के अंदर की शुभ भावना से यज्ञ को मजबूती मिल रही है, बल मिल रहा है, कोई चीज की कमी नहीं आई। आज बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी के जाने के बाद 12 साल हो चुके, 7 में दादी गई, 2007 में, आज 12 साल से दादी जानकी जी ने पूरे विश्व के अंदर रह करके, यहां नहीं सारे विश्व को एक हाथ में लेकर के, और इतना झुक करके सबको सम्मान दे करके, सबको इतना आदर दे करके, कोई चीज को ऐसा कोई नहीं कहे कि दादी जी के समय ये होता था, अभी नहीं होता। जो जिसकी डिपार्टमेंट थी, कोई डिपार्टमेंट में इंटरफेयर नहीं किया और सबको सम्मान दिया और कहा तुम बहुत अच्छा करते हो, जैसे तुम सबने दादी जी के सामने संभाला ऐसे यज्ञ को और संभालो और अच्छी तरह से बढ़ाओ, सबको छुट्टी दी। आज दादी ने, बड़ी दादी जी ने जो हम लोगों को सिखाया, सब सीखे तो यहीं पर, हम बाहर से सीख के नहीं आए, वरदान निकालना, क्वेश्चन निकालना, मुरली सेट करना, पत्र पुष्प तैयार करना, सब सीखे तो यहीं। लेकिन दादी जानकी जी ने भी कोई चीज में नहीं कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, जैसे तुम लोग कर रहे थे, भंडारा संभाला, यज्ञ का अकाउंट संभाला, यज्ञ के अंदर लिखा पढ़ी, सारी कारोबार संभाली, पत्रों के उत्तर देना, जबकि अभी दादी जी के बाद जानकी दादी के नाम से आने लगे, फिर भी दादी ने कहा नहीं, जैसे तुम दादी के समय सेवाएं करते थे सब वैसे ही करो, अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो भले पूछ लो, बता दो क्या गया है बताओ, अचानक कहती है यहाँ पर लिटर लिखो, यहाँ पर ऐसे भेजो, लेकिन कभी इंटरफेयर नहीं करते, कभी ये नहीं कहती नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया, सबको सम्मान दे करके, उतना ऊंचा सम्मान दिला करके याद, और इतने बड़े यज्ञ को आज निर्विघ्न चलाना, इतनी वृद्धि के बाद भी कोई को ये न पता चले कि यहाँ पर भी कोई ऐसी बातें होती हैं, उसका कारण रहा है हमारी दादियों ने बहुत सहन किया है, समाया है और सबको सम्मान दिया है। तो इसलिए हमारे यज्ञ के जो पूर्वज हुए हैं सब की ये निर्माणता रही, पढ़ाई से बहुत प्यार, अमृत वेला एक दिन भी मिस न हो। और दीदी दादी की थोड़ी सी शिक्षाएं बता के मैं क्लास समाप्त करूंगा, क्योंकि पूर्वजों की कई बातें हैं, मैंने पहला क्लास जो कराया था वो कोई बातें यहाँ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। दीदी की तीन शिक्षाएं, दीदी हमेशा कहती थी यज्ञ में आए हो, यहाँ सेवा करो, लेकिन संघ की बहुत संभाल करना। हम लोगों के प्रश्न उठते थे यहाँ संघ की संभाल किस लिए, संघ तो बाहर का खराब है, यहाँ तो ब्राह्मणों का संघ है। लेकिन दीदी का एक शब्द रहता था, अगर कोई यहाँ रह करके पर चिंतन करता है, पर दर्शन करता है, अगर वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है, अमृत वेला नहीं करता है, मुरली पर ध्यान नहीं है, तो उसका संग कभी नहीं करना। नहीं तो वो भी अपने समान आपको अपना रंग लगा देगा। उसको एक टाइटल देती थी दीदी, कहती थी सफेद ड्रेस में मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं, नौकर हैं, जिनका अपनी उन्नति के लिए ध्यान नहीं है, आए हैं समर्पित हो गए हैं, जैसे लोग नौकर पैसा लेते हैं काम करते हैं ऐसे ही खाना लेते हैं कपड़ा लेते हैं और काम करते हैं। इसलिए बहुत बड़ी शिक्षा ये थी कि कभी भी संग दोष में नहीं आना, और इस यज्ञ में समर्पित होकर के अगर कोई मुरली नहीं सुनता है, अगर कोई अमृत वेला नहीं सुनता है, तो उसके संग से अपने को बचाना। वो पढ़ चिंतन करेगा, पढ़ दर्शन करेगा, वो मुरली में नुक्स निकालेगा, अपने बड़ी बात बहनों की दादियों की कई बातें इधर की उधर करता रहेगा। इसलिए ध्यान देना, कोई भी अगर इधर उधर की बातें करता है तो उसके संग से अपने को बचाना। दूसरी शिक्षा उनकी ये थी कि मान लो हम सब बच्चे थे, ब्रह्मा कुमार तो बने, लेकिन कहती थी तुम ब्रह्मा कुमार तो हो लेकिन तपस्वी कुमार बन के दिखाओ। ब्रह्मा कुमार तो आजकल सफेद ड्रेस पहन लेते हैं, बैज लगा लेते हैं, ब्रह्मा कुमार हो गए, लेकिन अंदर एक है बाहर दूसरा है। अगर अंदर बाहर समानता नहीं है, माना वो ब्रह्मा कुमार नहीं है लेकिन फिर भी नामधारी है, तो सिर्फ नामधारी ब्रह्मा कुमार नहीं बनना लेकिन तपस्वी कुमार बन के दिखाओ। आपके अंग अंग से दिखाई दे, देह अभिमान का त्याग है और आत्म अभिमान स्थिति की तपस्या है। ये दीदी की शिक्षा थी। तीसरी कहती थी योग जो करते हो तुम लोग, क्योंकि योग दीदी अमृत वेला कराती थी, रोज अमृत वेले दीदी ही कराती थी, बहुत पावरफुल योग कराती थी, ऐसे जरा भी ऐसे इधर नहीं एकदम। और फिर कहती थी देखो इधर आओ कैसे योग करते हो। मेरे को एक दिन बुला के बोलती कैसे योग करते हो, दीदी जैसे सब करते हैं ऐसे मैं भी करता हूँ। बोली नहीं नहीं उद्धव बन के योग नहीं करो, गोपी बन के योग करो। गोपी और उद्धव में क्या अंतर होता, मैं तो कोई इतना शास्त्र नहीं पढ़ा। कहती गोपियां जो थी ना भगवान के साथ बहुत प्यार करती थी, उनको नचाती थी, उनके साथ डांस करती थी, उनके साथ खेल पाल करती थी, तो बाबा को बहुत प्यार से गोपी बन करके याद करो, स्नेह में खो जाओ, डूब जाओ। सिर्फ ज्ञानी आत्मा, उद्धव ज्ञानी था, वो समझता था भगवान है, बुद्धि वाला था, दिमाग वाला था, दिल वाला नहीं था। तो दिल वाले बनना, दिमाग वाले नहीं बनना। तो ये तीन शिक्षाएं दीदी की मैं आपको सुनाता हूं। दादी एक बात कहती थी, दादी की भी तीन बातें सुना दूं। दादी जब टीचर से मिलती थी कहती थी देखो टकराव का कारण होता है, कोई भी बात होती, कोई सारा मिलता है, कोई करेक्शन करता है कि गलती है, तो सारी कहने में क्या जाता है, सॉरी कर लो, साड़ी गंदी नहीं हो जाएगी, सॉरी कर लो झगड़ा टूट जाएगा। कहती हार मानी हारमनी हो गई, हार मानी हारमनी हो गई। तो ये दीदी की, दादी की शिक्षा थी। हमेशा कहती थी कोई जहां वाद विवाद हो रहा हो, टकराव हो रहा है, वहां पर सॉरी हार मान लो, छोटे बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और जहां अहम आता है, मैं करते हो, वहां टकराव पैदा होता है। और दादी की एक बहुत बड़ी खूबी थी, सच्चाई बहुत थी, उनको सच्चाई बहुत पसंद थी। कोई छिपा के बात करेगा तो फट से पहचान लेगी, फिर बहुत ऊंची ऐसी दृष्टि देगी जो उसको कांपने लगेगा। ऐसा कोई एक ईश्वरीय नियम मर्यादा को उल्लंघन करके अगर दादी जी के सामने जाता था, दादी अगर पूछ दे कि ऐसा हुआ है, उसने कुछ बहाने बता दिया, तो दादी फिर ला एंड लॉ। कईयों को तो दादी ने एक झटके से यज्ञ से बाहर कर दिया, ये नहीं सोचा ये क्या करेगा, पता नहीं डिसर्विस करेगा। तूने इस नियम का उल्लंघन किया, इस मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम यज्ञ के लायक नहीं हो, अभी जाना पड़ेगा। बुलाया भाइयों को, इनका उठाओ सामान, फेंक दो, इनको निकाल दो यहां से। बहुत लॉफुल लॉ भी बहुत था, नियम मर्यादाओं में जो चलने वाले थे उनको तो सिर पर उठाती थी, इतना प्यार देती थी। मैं आपको बताता हूं, मैं एक बार बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ा। 84 में जब यात्राएं निकली थी, पद यात्राएं, उस समय मैं बिस्तर यात्रा पर था, तो बीमार पड़ा और ऐसी बीमारी थी जो चेहरा बहुत अच्छा था लेकिन हाथ पैर एकदम काम नहीं करते, जरा एक सीढ़ी चढ़ो गिर जाओ, पोलियो जैसा बीमारी, नसें सारी जाम, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। बहुत ठंडी थी और कुछ गलत दवाई मिली, उसका रिएक्शन हो गया। तो दादी ने मुझे पालनपुर में रखा, यहाँ अपने हॉस्पिटल नहीं थे। 10 दिन मैं पालनपुर में रहा, डॉक्टरों ने कंट्रोल किया। तो दादी बीच बीच में कभी मोहिनी बहन को भेजे, कभी यीशु दादी को भेजे, जाओ उससे मिल के आओ, उसको देख के आओ, यहाँ से सब प्रपालना मिलती रही। फिर डॉक्टर्स ने मुझे कहा अभी फिजियोथेरापी करो, अभी कंट्रोल में आ गया, 1 मास आपको अहमदाबाद में रहना पड़ेगा फिजियोथेरापी के लिए। तो मैं फिजियोथेरापी के लिए गया था, अहमदाबाद में रहता, और दादी यहाँ पर मैं अकेला ही था, मूली टाइप करने वाला और कोई नहीं था। मूली रुक गई, फिर मैंने कहीं से फोन किया, किसी भाई को बोला कि भाई किसी को भेज दो हिंदी टाइपिस्ट को। अब हिंदी टाइपिस्ट तो आ जाते हैं लेकिन सिंधी पढ़ने वाला चाहिए, फिर उसके साथ बहनों को लगाना पड़ता है, सिंधी दादियों को लगाना पड़ा। भाई ये कहा या मदद किया करके, लेकिन दादी को बड़ा ख्याल चले, राजू को बीमार नहीं होना चाहिए था। फिर दादी गई यहां से, एकदम अचानक मेरे पास आई अहमदाबाद में। मैं सेंटर पर ही था, हॉस्पिटल नहीं था उस समय, फिजियोथेरापी के लिए 1 घंटा जाता था। दादी ने सबको बोल दिया, उसके पास ज्ञान बहुत है, मुरलियां सुनता, पढ़ता है, टाइप करता है, उसको बैठने नहीं देना, रोज सवेरे सवेरे अपने क्लास में ले जाओ और उसको सब जगह क्लास करवाओ, अहमदाबाद में जितने सेंटर हैं सब जगह क्लास कराना चाहिए उसको, फ्री नहीं रखना, नहीं तो सोचेगा मैं बीमार पड़ गया, सोचना नहीं चाहिए बीमारी को। तो दादी ने मेरे को रोज क्लास दे दिया। अब क्लास कराएंगे तो चिंतन भी चलेगा, कुछ पॉइंट्स भी सोचने पड़ेंगे, तो मैं सब जगह क्लास कराना वहीं से सीखा अहमदाबाद से बीमारी से। फिर दादी आई एक दिन और पता चला दादी आ रही है, सबको पता चल गया, तो बहुत सारे टीचर्स आई, दादी ने किसी को भी नहीं देखा, सबको ऐसे कर दिया, और जहां मैं था मेरे पास सीधा आ गई और मैं खड़ा हो गया, ऐसे ही खड़ा था। और फिर दादी ने जो प्यार किया, ऐसे बाकी में लिया ऐसे, और बाकी में लेकर के ऐसे हाथ पूरा शरीर पर घुमा दिया, कहते कुछ नहीं तेरे को हुआ है, ठीक हो गया चल। और मैं 2 दिन में ठीक होकर के आ गया मधुबन में। डॉक्टर्स ने मुझे कहा था अभी तुम टाइप कभी नहीं कर सकते हो, मैंने कहा ये मुझे बाबा की सौगात मिली है, मैं टाइप कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं मधुबन में आया, मैंने फिर से प्रैक्टिस शुरू की टाइप की, जो मैं 8-10 मिनट में स्टेंसिल काटता था वो मैं 7 मिनट में काट के दिखाया, शुरू कर दिया टाइप। लेकिन 1-1.5 महीने की बहुत कड़ी परीक्षा थी, और उस परीक्षा में दादी ने ऐसे पार कराया जो ऐसे लगता है कि दादी का वो जो स्नेह था, वो भावनाएं थी, उस भावना के आधार से आज बाबा इतनी सेवाएं करा रहा है। ओम शांति।